अध्याय 25 तोड़े। यह अध्याय मत्ती 25 आयत 13-30। जैतून के पर्वत पर मसीह ने दुनिया के अपने दूसरे आगमन के विषय में शिष्यों से बात की थी। उन्होंने संकेत निर्दिष्ट किए कि जो यह दिखाने के लिए थे कि उनका आने वाला समय निकट था, और अपने चेलों को देखने और तैयार होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर से चेतावनी को दोहराया, देखो इसलिए, क्योंकि न तो वह दिन और न ही वह समय है जिसमें मनुष्य का पुत्र आता है। फिर उसने दिखाया कि उसके आने को कौन सी घड़ी है। समय बिताने के लिए है, निष्क्रिय प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि मेहनत काम करने में। यह सबक उन्होंने प्रतिभाओं को दृष्टांत ने सिखाया। स्वर्ग का राज्य, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ऐसे देश में यात्रा कर रहा है जिसने अपने स्वयं के सेवकों को बुलाया और उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया, और एक को उन्होंने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े तथा तीसरे को 1 तोड़ा दिया। प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार तोड़ा दिया गया। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा पर चला गया। एक दूर देश की यात्रा करने वाला आदमी मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस दृष्टांत को बोलते हुए जल्द ही इस धरती पर से स्वर्ग को प्रस्थान करने वाला था। बंधुओं या दास, दृष्टांत के मसीह के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपने नहीं हैं, हमें एक मूल्य के साथ खरीदा गया है। 1 कुरिन्थियों 6:20। चांदी और सोने के रूप में भ्रष्ट चीजों के साथ नहीं, लेकिन मसीह के कीमती रक्त के साथ। 1 पत्रस 1:18-19। क्योंकि वे शालीन रहते हैं, इसलिए वे स्वयं जीवित हो गए। 2 कुरिन्थियों 5:15। सभी पुरुषों को इस अनंत मूल्य के साथ खरीदा गया है। इस संसार में स्वर्ग का सारा खजाना डालकर हम सभी स्वर्ग में मसीह को देकर परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य की इच्छा, स्नेह, मन और आत्मा को खरीदा है। चाहे आस्तिक हों या अविश्वासी, सभी लोग प्रभु की संपत्ति है। सभी को उनके लिए सेवा करने के लिए कहा जाता है, और जिस तरह से वे इस वादे को पूरा करते हैं, सभी को महान निर्णय के दिन एक खाता प्रस्तुत करना होगा। लेकिन ईश्वर के दावों को सभी के द्वारा पहचाना नहीं जाता है। ये वो है जिन्होंने मसीह की सेवा को स्वीकार किया है, जो दृष्टांत में अपने स्वयं के सेवकों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। मसीह के अनुयायियों को सेवा के लिए फिर से तैयार किया गया है। हमारे ईश्वर सिखाते हैं कि जीवन की सच्ची वस्तु सेवकाई है। मसीह खुद एक कार्यकर्ता था, और अपने सभी अनुयायियों को वो सेवा का नियम देता है, ईश्वर और उनके साथी पुरुषों की सेवा। यहां मसीह ने दुनिया को जीवन का एक उच्च गर्भाधन प्रस्तुत किया है, जो वो कभी नहीं जानते थे। दूसरों की सेवा करने से मनुष्य को मसीह के संबंध में लाया जाता है। सेवा का नियम जोड़ने वाली कड़ी बन जाता है, जो हमें ईश्वर और हमारे साथी पुरुषों के लिए बाध्य करता है। उनके सेवकों के लिए मसीह उसका भला करता है, उसके उपयोग करने के लिए कुछ, वो हर आदमी को अपना काम देता है। प्रत्येक के पास स्वर्ग की अनंत योजना में अपना स्थान है, प्रत्येक के साथ काम करना है। आत्माओं की मुक्ति के लिए मसीह निश्चित रूप से स्वर्गीय हवेली में हमारे लिए तैयार किया गया स्थान वो विशेष स्थान नहीं है जो पृथ्वी पर निर्दिष्ट है। हम ईश्वर के लिए काम करते हैं, पवित्र आत्मा के उपहार। मसीह ने अपनी कलीसिया को जो प्रतिभाएं सौंपी है, वे विशेष रूप से पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान किए गए उपहार और आशीर्वाद व प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसकी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी किसी को सामर्थ्य थ्रेशोल्ड के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को उनके प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। 1 कुरिन्थियों 12:8-11। सभी पुरुषों को समान उपहार नहीं मिलते हैं, लेकिन मास्टर के हर नौकर को आत्मा का कुछ उपहार देने का वादा किया जाता है। इससे पहले कि वह अपने शिष्यों को छोड़ता, मसीह ने यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना 20 आयत 22। और फिर उसने कहा, और देखूं, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने भी की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। लूका 24 आयत 4। लेकिन तब तक नहीं जब तक कि उद्गम के रूप में उपहार अपनी पूर्णता में प्राप्त नहीं होता। विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से नहीं, शिष्यों ने अपने काम के लिए खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्माण कर दिया था, कि चूंकि आत्मा को प्राप्त करने का काम बाहर रखा गया था। फिर एक विशेष अर्थ में स्वर्ग के समान मसीह के अनुयायियों के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुवाई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। इफिसियों 4 आयत 8। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। इफिसियों 4 आयत 7। 1 कुरिन्थियों 1 आयत 12। उपहार मसीह में पहले से ही हमारे है, लेकिन उनका वास्तविक कब्जा ईश्वर की आत्मा के हमारे स्वागत पर निर्भर करता है।
आत्मा के वचन की सराहना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये होना चाहिए। इसकी पूर्ति का एहसास नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है। ये आत्मा की अनुपस्थिति है जो सुसमाचार की सेवकाई को इतना शक्तिहीन बनाती है। सीखने, प्रतिभा, वाग्मिता हर प्राकृतिक या अधिग्रहित हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा की उपस्थिति के बिना किसी भी दिल को नहीं छुआ जाएगा। कोई भी पापी मसीह के लिए नहीं जीता जाएगा। दूसरी ओर, यदि वे मसीह के साथ जुड़े हैं, यदि आत्मा के उपहार उनके हैं, तो उनके शिष्यों में सबसे गरीब और सबसे अधिक अज्ञानी के पास एक शक्ति होगी जो दिलों पर बनाएगी। ईश्वर उन्हें ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रभाव के परिश्रम के लिए चैनल बनाता है। अन्य तोड़े, प्रतिभाएं। आत्मा के विशेष उपहार के दृष्टांतों में दर्शाए गए एकमात्र प्रतिभा नहीं है। इसमें सभी उपहार और बंदोबस्त शामिल थे, चाहे मूल या अधिग्रहित, प्राकृतिक या आध्यात्मिक, सभी को मसीह की सेवा में नियुक्त किया जाना है। उनके शिष्य बनने में हम अपने आप को उस सब के साथ आत्मसमर्पण कर देते हैं जो हम है। ये तोहफे वो हमारे लिए लौटाता है और अपने साथ लोगों को आशीर्वाद देने में उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने अपनी कई क्षमता के अनुग्रह दिया है। प्रतिभाओं को अच्छी तरह से नहीं लगाया जाता है। वो जो 5 प्रतिभाओं का उपयोग करने की क्षमता रखता है, 5 प्राप्त करता है। वो जो सुधार सकता है, लेकिन 2 प्राप्त करता है। वो जो बुद्धिमानी से केवल 1 का उपयोग करता है, 1 प्राप्त करता है। किसी को भी विलाप की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बड़े उपहार नहीं मिले हैं, क्योंकि वो हर आदमी की योग्यता रखता है। वो प्रत्येक ट्रस्ट के सुधार से समान रूप से सम्मानित होता है, चाहे वो महान या छोटा। जिस पर 5 प्रतिभाएं प्रतिबद्ध है, वो 5 के सुधार को प्रस्तुत करना है। वो जिसके पास 1 है, 1 का सुधार है। मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। 2 कुरिन्थियों 8 आयत 12। उस दृष्टांत में जिसने 5 प्रतिभाओं को प्राप्त किया और उसी के साथ व्यापार किया और उन्हें अन्य 5 प्रतिभाएं बनाई, और इसी तरह उसे जो 2 प्राप्त हुए, उसने अन्य 2 भी प्राप्त किए।
हालांकि कुछ प्रतिभाओं को उपयोग मिलाना है। यह सवाल की सबसे ज्यादा चिंता हमें नहीं है, मुझे कितना मिला है, लेकिन मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं जो मेरे पास है। मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं जो मेरे पास है। हमारी सभी शक्तियों का विकास हमारा पहला कर्तव्य है। जो हम ईश्वर और अपने साथी से नहीं भर रहा है, वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। मसीह में विश्वास का एक पेशा बनाने के लिए हम अपने आप को वह सब बनने की प्रतिज्ञा करते हैं जो हमारे लिए गुरु के लिए श्रमिक के रूप में संभव है, और हमें प्रत्येक संकाय को उच्चतम स्तर की पूर्णता के लिए खेती करनी चाहिए, ताकि हम सबसे अच्छी राशि प्राप्त करने में हम सक्षम हैं। प्रभु के पास एक महान काम है, और वो भविष्य के जीवन में उन लोगों के लिए सबसे अधिक योग्य होगा जो वर्तमान जीवन में सबसे वफादार इच्छुक सेवा करते हैं। प्रभु स्वयं के एजेंटों का चयन करता है
और प्रत्येक दिन विभिन्न परिस्थितियों में वह उन्हें अपने संचालन की योजना में एक परीक्षण देता है। प्रत्येक सच्चे दिल से उनकी योजना को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वो अपने एजेंटों को इसलिए चुनता है क्योंकि वे परिपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि उसके साथ संबंध के माध्यम से वे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।
ईश्वर केवल उन्हीं को स्वीकार करेगा जो उच्च उद्देश्य के लिए दष्ट संकलित हैं। वह प्रत्येक मानव एजेंटों को दायित्व देता है कि वह अपनी अदबी करे। नैतिक पूर्णता सभी की आवश्यकता है। गलत काम करने के लिए विरासत न मिली या खेती की प्रवृत्ति को समायोजित करने के लिए हमें कभी भी धार्मिकता के स्तर को कम नहीं करना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि चरित्र की अपूर्णता मापने योग्य है। चरित्र की अपूर्णता पाप है। चरित्र के सभी धर्मी गुण एक संपूर्ण सामंजस्यपूर्ण रूप में ईश्वर में वास करते हैं, और एक व्यक्ति उद्धारकर्ता में हर एक मसीह को इन विशेषताओं के अधिकारी होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। और जो ईश्वर के साथ मिलकर काम करेंगे उन्हें शरीर के हर अंग और मन की गुणवत्ता के लिए प्रयास करना चाहिए। सच्ची शिक्षा हर कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों की तैयारी है। यह ईश्वरीय सेवा के लिए शरीर और आत्मा का प्रशिक्षण है। यह वह शिक्षा है जो अनंत जीवन के लिए महान होगी।
प्रत्येक मसीही जीवन में प्रभु हर व्यक्ति में दक्षता और क्षमता में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। मसीह ने हमें अपनी मजदूरी, यहां तक कि अपनी खुद की रक्त की पीड़ा का भुगतान किया है, ताकि हमारे इच्छुक सेवा को सुरक्षित किया जा सके। वो हमें इस बात का उदाहरण देने के लिए हमारी दुनिया में कि हमें कैसे काम करना चाहिए और उसमें किस भावना को अपने श्रम में लाना चाहिए। वो हमें अध्ययन करने की इच्छा करता है कि हम उसके काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और दुनिया में उसका नाम गौरवान्वित कर सकते हैं, सम्मान के साथ, सबसे बड़े प्यार और भक्ति के साथ। पिता, जिसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। लेकिन मसीह ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है कि चरित्र पूर्णता प्राप्त करना एक आसान मामला है। एक महान सभी दौर चरित्र विरासत में नहीं मिला है। ये दुर्भाग्यवश से हमारे पास नहीं आता है। मसीह के गुणों और अनुग्रह से एक महान सभी दौर के चरित्र को व्यक्तिगत प्रयास से अर्जित किया जाता है। ईश्वर प्रतिभा मन की शक्तियां देता है। हम चरित्र बनाते हैं। ये कठिन कड़ी लड़ाइयों से बनता है। संघर्ष के बाद संघर्ष प्रवृत्तियों के खिलाफ होना चाहिए। हमें स्वयं की कड़ी आलोचना करनी होगी और किसी भी प्रतिकूल लक्षण को ठीक नहीं रहने देना चाहिए।
किसी को कहने न दे, मैं अपने चरित्र के दोषों का उपाय नहीं कर सकता। यदि आप इस निर्णय पर आते हैं तो आप निश्चित रूप से हमेशा की जिंदगी में पाने में असफल होते हैं। यदि आप बीमार नहीं हैं तो आप पर काबू नहीं पा सकते हैं। वास्तविक कठिनाई अचेतन हृदय के भ्रष्टाचार से उत्पन्न होती है और ईश्वर के नियंत्रण में प्रस्तुत करने की। बहुत से लोग जिन्हें परमेश्वर ने उत्कृष्ट कार्य करने की योग्यता दी है क्योंकि वे बहुत कम प्रयास करते हैं। हमारे लोग जीवन से गुजरते हैं जैसे कि उनके पास इस तरह से उनके कार्यों के लिए एक अनुपातिक अनुपात प्राप्त होगा। याद रखें कि आप अपने आप को सेट करने की तुलना से उच्च स्तर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। वे अपना निशान ऊंचा और कदम से कदम निर्धारित करें, भले ही दर्दनाक प्रयास से हों। आत्म अस्वीकार और बलिदान द्वारा प्रगति की सीढ़ी की पूरी लंबाई पर चढ़ता है। आप कुछ भी बाधा न डालें। भज्ञा ने किसी भी इंसान के बारे में इतनी दक्षता से अपना जाल नहीं बुना है कि उसे असहायक और अस्वस्थ रहने की आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियों से उबरने के लिए दष्ट निश्चय करना चाहिए। एक बाधा के टूटने से आगे जाने की अधिक क्षमता और साहस मिलेगा। सही दिशा में दष्ट संकल्प के साथ दबाएं और परिस्थितियों आपकी मददगार होगी, ना कि आपकी अड़चने। मास्टर की महिमा के लिए महत्वाकांक्षी बने। चरित्र के हर अनुग्रह की खेती करें। अपने चरित्र निर्माण के हर चरण में
आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। ये आप कर सकते हैं। हनोक ने उसे पतित युग में रहते हुए प्रसन्न किया, और हमारे दिन में इस तरह के उत्साह हैं।
दानियल की तरह दष्ट रहिए, वह वफादार राजनेता जिसे कोई प्रलोभन भ्रष्ट नहीं कर सकता। उसे निराश मत करो, जो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने तुम्हारे पापों को खारिज करने के लिए अपना एकमात्र जीवन दे दिया। वो कहता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। यह याद रखना, यदि आपने गलतियों की है तो आप यकीनन जीत हासिल कर सकते हैं, यदि आप इन गलतियों को देखते हैं और उन्हें चेतावनी के रूप में मानते हैं। इस प्रकार आप हार को जीत में बदल सकते हैं, दुश्मन को निराश कर सकते हैं और अपने उद्धारक को सम्मानित करते हैं। ईश्वरीय समानता के अनुसार एक चरित्र ही एकमात्र खजाना है जिसे हम इस दुनिया से ले जा सकते हैं। जो लोग इस संसार में मसीह के निर्देशन में हैं, वे हर दिव्य प्राप्ति को अपने साथ स्वर्गीय हवेली में ले जाएंगे, और स्वर्ग में हम लगातार सुधार कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण फिर इस जीवन में चरित्र का विकास। स्वर्गीय बुद्धि मानव एजेंट के साथ काम करेगी, जो दष्ट विश्वास के साथ काम करती है, और चरित्र की पूर्णता, जो कार्यवाही में पूर्णता तक पहुंच जाएगी। इस काम में लगे सभी लोगों को मसीह कहता है, मैं आपकी मदद करने के लिए आपके दाहिने हाथ में हूं। जैसे मनुष्य की इच्छा ईश्वर की इच्छा से चलती है, वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। जो कुछ भी उसकी आज्ञा पर किया जाना है, वह उसकी सामर्थ्य में पूरा किया जा सकता है। उसकी सारी बोली लग रही है। मानसिक संकाय। ईश्वर की मानसिक संकायों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह डिजाइन करता है कि उसके नौकरों में दुनियादारी की तुलना में अधिक बुद्धिमता और स्पष्ट विवेक निहित होगा, और वह उन लोगों से अप्रसन्न होता है जो कुशल, सुप्रतिष्ठित कार्यकर्ता बनने के लिए बहुत लापरवाह या अकर्मण्य होते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। सभी आत्मा क्षमता के लिए बुद्धि को विकसित करने का दायित्व देता है कि सभी मन से हम निर्माता को जानते हैं और प्यार करते हैं। यदि उसकी आत्मा को नियंत्रण में रखा जाता है, तो जितनी अच्छी तरह से बुद्धि को खेती की जाती है, उतना ही प्रभावी रूप से ईश्वर के प्रति अभिमान रखता है और उसकी सेवा में प्रभु द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन जो लोग समान भावना को साथ पूरी तरह से शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं, वे मसीह के लिए और अधिक व्यापक कार्य कर सकते हैं। वे सहूलियत के आधार पर खड़े हैं। दूसरों को अपना ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से हम सभी शिक्षा को संभव बनाने की इच्छा रखते हैं। कोई भी नहीं जान सकता है कि उन्हें श्रम के लिए कहां या कैसे कहा जा सकता है या ईश्वर के लिए बोलना है। हमारे स्वर्गीय पिता अकेले देखते हैं कि वह पुरुषों को क्या बना सकते हैं। हमारे सामने ऐसी संभावनाएं हैं जिनके विषय में हमारा विश्वास योग्य नहीं है। हमारे दिमागों को इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो हम उनके शब्द के सत्य को उच्चतम सांसारिक अधिकारियों के सामने इस तरह से प्रस्तुत कर सकें, जैसे कि उनके नाम की महिमा करें। हमें अपने आप को ईश्वर के लिए काम करने के लिए बौद्धिक रूप से अर्हता प्राप्त करने के एक भी अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। उसे युवा होने दे जो इसे प्राप्त करने के लिए दष्ट संकल्प के साथ काम करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। उद्घाटन के लिए प्रतीक्षा न करें, एक स्वयं के लिए बनाओ। खुद को प्रस्तुत करने वाले किसी भी छोटे तरीके से पकड़ लें। अर्थव्यवस्था का अभ्यास करें। भूख की संतुष्टि चाहने वाले के लिए अपने साधनों को खर्च न करें। ईश्वर के रूप में उपयोगी और कुशल बनने के लिए दष्ट संकल्पित करें। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरी तरह से विश्वास रखें। बुद्धि को मजबूत बनाने के लिए अपनी पहुंच के भीतर हर लाभ को साबित करें। पुस्तकों के अध्ययन को उपयोगी हाथ को परिश्रम के साथ जोड़ दें, और विश्वास योग्य प्रयास और प्रार्थना के ऊपर से प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित करती है। ये आपको एक सर्वांगीण शिक्षा देगा। इस प्रकार आप चरित्र में वर्षद्ध कर सकते हैं और अन्य दिमागों पर प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें ईमानदारी और पवित्रता के मार्ग पर ले जा सकते हैं।
यदि हम अपने अवसरों विशेषाधिकारों के प्रति जागृत होते हैं जो स्वयं शिक्षा के कार्य में अधिक निपुण हो सकते हैं। सच्ची शिक्षा का मतलब है कि कॉलेजों से अधिक शिक्षा। हालांकि विज्ञान के अध्ययन को उपेक्षित नहीं किया जाता है, लेकिन ईश्वर के एक महत्वपूर्ण संबंध के माध्यम से प्राप्त करने के लिए एक उच्च प्रशिक्षण है। हर छात्र अपनी बाइबल लें और खुद को महान शिक्षक के साथ संवाद में जगह दें। ईश्वरीय सत्य की खोज में कठिन समस्याओं से लड़ने के लिए मन को प्रशिक्षित और अनुशासित होने दें।
उन गुटों ने ये दावा किया है कि वे अपने साथी को आशीर्वाद दे सकते हैं कि वे स्वयं परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके अध्ययन से उनकी मानसिक शक्तियों को अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक विस्तार होगा, संकायों का एक अविकसिता, और मन कवि और दक्षता करेगा। आत्म अनुशासन का अभ्यास हर किसी को करना चाहिए जो ईश्वर के लिए एक कार्यकर्ता होगा। यह वाग्मिता या सबसे शानदार प्रतिभाओं से अधक को पूरा करेगा। एक सामान्य मस्तिष्क जो भली भांति अनुशासित है, सबसे अधिक शिक्षित और आत्मनियंत्रण के बिना सबसे अधिक दिमाग और सबसे बड़ी प्रतिभा की तुलना में अधिक काम पूरा करेगा। भाषण। भाषण की शक्ति एक प्रतिभा है। भाषण जिसे परिश्रम से खेती की जानी चाहिए। ईश्वर से प्राप्त सभी उपहारों में से कोई भी इससे बड़ा वरदान पाने में सक्षम नहीं है। जिस आवाज को स्वर्ण हम जानते हैं, उसके साथ प्रार्थना और ईश्वर की स्तुति करते हैं, फिर कितना महत्वपूर्ण है। चाह है कि इसे इतना अच्छा होने के लिए, सबसे प्रभावी होने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
आवाज की संस्कृति और सही उपयोग की बहुत उपेक्षा की जाती है, यहां तक कि बुद्धि और मसीही सक्रियता के व्यक्तियों द्वारा भी। बहुत से ऐसे हैं जो इतनी कम या इतनी तेजी से पढ़ते या बोलते हैं कि उन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता है। कुछ में मोटा अविवेकी उच्चरण है, अन्य लोग तीखे स्वर में उच्च कुंजी में बोलते हैं, जो श्रोताओं के लिए दर्दनाक हैं। ग्रंथों, भजनों और सार्वजनिक सभाओं से पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और अन्य कागजात कभी कभी ऐसी खबरों में पढ़े जाते हैं कि उन्हें एक ऐसा शब्द नहीं समझा जाता जिससे उनका बल और प्रभाव नष्ट हो जाए। ये एक बुराई है जिसे सुधारा जा सकता है और ठीक किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर बाइबल निर्देश देती है। लेवियों में से एजरा के दिनों में लोगों ने पवित्र शास्त्र पढ़ा, यह कहा जाता है। उन्होंने पुस्तक में ईश्वर के कानून को अलग तरीके से पढ़ा और सम्मान दिया, और उन्हें पढ़ने को समझने का कारण बना। नहेम्या 8:8। परिश्रम पूर्वक प्रयास करने से भी बुद्धिमानी से पढ़ने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और एक पूर्ण, स्पष्ट, गोल स्वर में एक अलग और प्रभावशाली तरीके से बोल सकते हैं। ऐसा करने से हम मसीह के लिए श्रमिकों के रूप में अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं।
प्रत्येक मसीही को दूसरे मसीही के बेशुमार धन से अवगत कराने के लिए कहा जाता है, इसलिए उन्होंने भाषण में पूर्णता की तलाश की। उसे परमेश्वर के वचन को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वो श्रोताओं की प्रशंसा करे। परमेश्वर ये नहीं समझता कि उसके मानव चैनल अकारण होंगे। ये उसकी इच्छा नहीं है कि मनुष्य उस स्वर्गीय धारा को भिन्न भिन्न या नीचा दिखाए जो उसके माध्यम से दुनिया में आती है। हमें यीशु की ओर देखना चाहिए, आदर्श स्वरूप। हमें पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और उसकी ताकत में हमें हर अंग को सही काम के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए सच है जिन्हें सार्वजनिक सेवा कहा जाता है। प्रत्येक सेवक और प्रत्येक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों को संदेश के रूप में दे रहा है जिसमें अनंत हित शामिल है। सच बोला गया है कि उनका अंतिम गणना के महान दिन में न्याय किया जाएगा, और कुछ आत्माओं के साथ संदेश पहुंचाने वाले के तरीके से उसके स्वागत या अस्वीकृति का निर्धारण किया जाएगा। फिर इस शब्द को इतना बोलने दो कि ये समझ में आए और दिल को प्रभावित करे। धीरे धीरे, विशिष्ट रूप से और पूरी तरह से इसे अभी पूरे जोश के साथ बोला जाना चाहिए जो इसके महत्व की मांग करता है।
भाषण की शक्ति का सही संस्कृति और उपयोग करना मसीह के काम को हर पंक्ति के साथ करना है। यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और एक दूसरे के साथ हमारे सभी प्रकोपों में सहायता करता है। हमें अपने आप को सुखद स्वर में बोलने के लिए शुद्ध और सही भाषा और उन शब्दों का उपयोग करने के लिए आदि होना चाहिए जो दयालु और विनम्र है। मीठे दयालु शब्द आत्मा को ओस और कोमल वर्षा के रूप में है। इंजील मसीह के बारे में कहता है कि अनुग्रह उसके होठों में डाला गया था कि वो जानता है कि उसे मौसम में काम कैसे करना है। यह थका हुआ है। भजन संहिता 45 आयत 12, यशाया 50 आयत 4। और प्रभु हमसे बोलता है, अपनी भाषा को हमेशा कृपा के साथ रहने दो, कुलुसियों 4 आयत 6। ये श्रोताओं के लिए कृपा कर सकता है, इफिसियों 4 आयत 29। दूसरों को सुधारने या सुधारने के लिए हमें अपने शब्दों से सावधान रहना चाहिए। वे जीवन के लिए जीवन या मौत के लिए मौत का एक स्वाद होगा। फटकार या परामर्श देने में तेज गंभीर भाषा में बहुत लोग घायल आत्मा को ठीक करने के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं। इन असभ्य भाषा द्वारा आत्मा को जकड़ लिया जाता है और अक्सर गलत करने वालों को विद्रोह करने के लिए उकसाया जाता है। सिद्धांतों की वकालत करने वाले सभी को प्यार के स्वर्गीय तेल को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सभी परिस्थितियों में फटकार और प्यार में बात करनी चाहिए, तब हमारे शब्द सुधरेंगे लेकिन अति रंजित नहीं होंगे। उसकी पवित्र आत्मा द्वारा मसीह बल और शक्ति की आपूर्ति करेगा, ये उनका काम है।
एक भी शब्द बिना सलाह के नहीं बोलना है। कोई बुरा नहीं बोल रहा है, कोई तुच्छ बात नहीं है, कोई भयावह दोहराव या अशुद्ध सुझाव नहीं है। जो मसीह का अनुसरण कर रहा है उसके होंठ बच जाएंगे। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा लिखता है, कहता है, कोई भी भ्रष्ट संचार अपने मुंह से न निकलने दे, इफिसियों 4 आयत 29। एक भ्रष्ट संचार का मतलब केवल उन शब्दों से नहीं जो निष्फल है, इसका अर्थ है पवित्र राजसी शुद्ध और अपरिभाषित धर्म के विपरीत कोई भी अभिव्यक्ति। इसमें अशुद्ध संकेत और बुराई के गुप्त आवरण शामिल है। जब तक तुरंत विरोध नहीं किया जाता, ये महान पाप के कारण बनते हैं। प्रत्येक परिवार में प्रत्येक मसीही व्यक्ति पर भ्रष्ट भाषण के खिलाफ रास्ता बंद करने का कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। जब उन लोगों की संगति में जो मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि यदि संभव हो तो बातचीत के विषय बदल दे। ईश्वर की कृपा की मदद से हमें चुपचाप शब्दों को छोड़ देना चाहिए या एक विषय को पेश करना चाहिए जो बातचीत को एक लाभदायक चैनल में बदल देगा।
भाषण की उचित आदतों के लिए अपने बच्चों को प्रशिक्षित करना माता पिता का काम है। इस संस्कषत के लिए सबसे अच्छा स्कूल घर का जीवन है। शुरुआती वर्षों से बच्चों को सम्मानपूर्वक और प्यार से अपने पिता माता और एक दूसरे से बात करना सिखाया जाना चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि केवल सज्जनता, सच्चाई और पवित्रता के शब्दों को अपने शब्दों को मानना चाहिए। बात दे कि माता पिता स्वयं मसीह के स्कूल में दैनिक शिक्षार्थी है, फिर उदाहरण के द्वारा वे अपने बच्चों को ध्वनि भाषण का प्रयोग सिखा सकते हैं जिसकी निंदा नहीं की जा सकती, तीतुस 2 आयत 8। यह उनके कर्तव्यों में सबसे महान और सबसे अधिक जिम्मेदारी है। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें अपने शब्दों को ऐसे बनाना चाहिए जैसे कि मसीही जीवन में एक दूसरे की सहायता और प्रोत्साहन हो। जितना हम करते हैं उससे कहीं अधिक हमें अपने अनुभव में अनमोल अध्यायों की बात चाहिए। हमें ईश्वर की दया और कृपा की बात करनी चाहिए जो कि प्रेमी के प्रेम की अतुलनीय गहराइयों में है। हमारे शब्दों में शुद्ध और धन्यवाद के शब्द होने चाहिए। यदि मन और हृदय ईश्वर के प्रेम से भरे हैं जो वार्तालाप में प्रवृत्त होगा। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है उसे प्रदान करना कोई कठिन बात नहीं होगी। महान विचार, महान आकांक्षाएं, सच्चाई की स्पष्ट धारणाएं, निस्वार्थ उद्देश्य, पवित्रता और पवित्रता के लिए तड़प, उन शब्दों में फल देंगे जो हृदय के खजाने के चरित्र को प्रकट करते हैं।
जब मसीह इसी प्रकार हमारे भाषण में प्रकट होता है तो उसके पास आत्माओं के जीतने की शक्ति होगी।
हमें उन लोगों से मसीह की बात करनी चाहिए जो उन्हें नहीं जानते हैं। हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा मसीह ने किया। जहां भी वह समास्थल में सड़क के किनारे नाव से थोड़ी दूर जमीन पर फरीसी की दावत या प्रचार की मेज पर वह उच्चतर से संबंधित चीजों के पुरुषों से बात करता था। प्रकृति की बातें, दैनिक जीवन की घटनाएं उनके द्वारा सत्य के शब्दों से बंधी हुई थीं। उसके सुनने वालों के दिल उसके लिए तैयार थे, क्योंकि उसने बीमारों को चंगा किया, अनेक दुखियों को दिलासा और अनेक बच्चों को गोद में लिया और आशीर्वाद दिया था जब उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले। तो उनका ध्यान उसी पर गया और हर शब्द के रूप में आत्मा का जीवन के लिए एक स्वाद था। तो ये हमारे साथ होना चाहिए। हम जहां भी हैं, हमें उद्धारकर्ता के दूसरों से बात करने के अवसर देखने चाहिए। यदि हम अच्छा करने में मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हैं तो हमारे दिल खुले रहते हैं, जैसा कि उन्होंने उनके साथ किया था। कोई अचानक नहीं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम से पैदा हुई हम उन्हें उनके बारे में बता सकते हैं, जो 10,000 में सबसे मुख्य है और एक पूरी तरह से प्यारा। श्रेष्ठ गीत 5:10-16। यह उच्चतम काम है जिसमें हम भाषण की प्रतिभा को नियोजित कर सकते हैं। ये हमारे लिए था कि हम मसीह को पाप मुक्ति रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभाव। यीशु मसीह का जीवन एक व्यापक प्रभावहीन प्रभाव था, एक ऐसा प्रभाव जिसने उन्हें ईश्वर और पूरे मानव परिवार के लिए बाध्य किया। मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसे प्रभाव के साथ निवेश किया है जो उसके लिए स्वयं का जीना असंभव बनाता है। व्यक्तिगत रूप से हम अपने साथी पुरुषों के साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर को महान हिस्सा है और हम आपसी दायित्वों के तहत खड़े हैं। कोई भी आदमी अपने साथी पुरुषों से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। प्रत्येक की भलाई के लिए दूसरों को प्रभावित करता है। यह ईश्वर का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दूसरों के प्रति उदासीन महसूस करें और खुशी को बढ़ावा दे। प्रत्येक आत्मा अपने स्वयं के वातावरण से घिरा हुआ है। एक वातावरण, यह विश्वास, साहस और आशा का जीवन शक्ति के साथ आरोपित हो सकता है, या ये भारी हो सकता और असंतोष और स्वार्थ की भावना के साथ ठंडा हो सकता है। हमारे आसपास के वातावरण से प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ हम संपर्क में आते हैं, वो जानबूझकर या अनजाने में प्रभावित होता है। यह एक जिम्मेदारी है जिससे हम खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे शब्दों, हमारे कृत्यों, हमारी पोशाक, हमारे निर्वासन, यहां तक कि अभिव्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की बनी हुई धारणा के कारण अच्छे या बुरे परिणाम सामने आते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं माप सकता। प्रत्येक आवेग से करें। इस प्रकार लगाया जाता है कि बीज बोया जाए और इसकी फसल का उत्पादन करें। यह मानव घटनाओं की लंबी श्रृंखला में लिखे हैं, जिसका विस्तार हम जानते हैं कि कहीं नहीं है। यदि हमारे उदाहरण से हम अच्छे सिद्धांतों के विकास में दूसरों की सहायता करते हैं तो हम उन्हें अच्छा करने की शक्ति देते हैं। अपनी बारी में वे दूसरों पर समान प्रभाव डालते हैं और वे अभी भी दूसरे पर प्रभाव डालते, जिससे हमारे अचेतन प्रभाव से हजारों धन्य हो सकते हैं। झील में एक कंकर फेंको और एक लहर बनती है, और दूसरी ओर जब तक वे चक्र को चौड़ा नहीं कर लेते तब तक वह किनारे तक नहीं पहुंचता। ऐसा ही हमारा प्रभाव है। हमारे ज्ञान से परे या उसे आशीर्वाद देने या कोसने में दूसरों पर निर्भर करता है। चरित्र शक्ति है। एक सच्चे निस्वार्थ ईश्वरीय जीवन का मुख्य गवाह लगभग एक अनूठा प्रभाव रखता है। हमारे जीवन पर मसीह के चरित्र को प्रकट करके हम आत्माओं को बचाने के काम में उनके साथ सहयोग करते हैं। ये हमारे जीवन में उनके चरित्र को प्रकट करते हैं कि हम उनके साथ सहयोग करते हैं, और हमारे प्रभाव का दायरा जितना व्यापक होगा हम उतना ही अच्छा करेंगे। जब परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग मसीह के उदाहरण का पालन करते हैं, तब प्रत्येक कार्य इस बात की साक्षी देता है कि वे परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें।
तो क्या कलीसिया में दुनिया को स्थानांतरित करने की शक्ति होगी?
लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभाव किसी बुराई के लिए कम नहीं है। अपनी आत्मा खो देना एक भयानक बात है, लेकिन अन्य आत्माओं के नुकसान का कारण भी अधिक भयानक है। हमारे प्रभाव को मृत्यु के लिए एक मौत का नैतिक होना चाहिए एक भयपूर्ण विचार है। अभी तक यह संभव है। कई लोग मसीह के साथ इकट्ठा होने का दावा करते हैं, वे उससे बिखर रहे हैं। यही कारण है कि कलीसिया इतनी कमजोर है। कई स्वतंत्र रूप से आलोचना और आरोप लगाते हैं। संदेह, ईर्ष्या और असंतोष को अभिव्यक्ति देकर वे स्वयं को शैतान के रूप में उपजाते हैं। वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसे महसूस करते हुए उनके माध्यम से विरोधी न उसके माध्यम से अपना उद्देश्य पूरा किया। बुराई की छाप बनाई गई है, छाया डाली गई है। शैतान के तीरों ने अपना निशान पाया है। अविश्वास और नीच बेवफाई ने उन शैतान के लिए कार्यकर्ता उन लोगों के प्रति शालीनता से पेश आते हैं जिन पर उन्हें संदेह किया है और जिन्हें अब फटकार और भड़काने की कोशिश की जाती है। वे इन आत्माओं की तुलना में खुद की चापलूसी करते हैं। वे सदाचारी और धर्मी होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि चरित्र के ये दुखद मलबे उनके अपनी जुबान और विद्रोही दिल के काम है। यह उनके प्रभाव के माध्यम से है। प्रलोभन गिर गए हैं। इतनी फजीहत, स्वार्थी, भोग और लापरवाह उदासीन मसीही की ओर से जीवन के पथ से कई आत्माओं को दूर कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वर से मिलने से डरते हैं, ईश्वर के प्रभाव के परिणाम से।
ये ईश्वर की कृपा से ही है कि हम इस बंदोबस्त का सही उपयोग कर सकें। अपने आप में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम अच्छे के लिए प्रभावित कर सकें। यदि हम अपनी असहायता और अपनी दिव्य शक्ति की आवश्यकता का एहसास करते हैं तो हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा। हम जानते हैं कि एक दिन, एक घंटे या एक पल का क्या परिणाम हो सकता है। यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि हम अपने स्वर्गीय पिता के लिए अपने तरीके के बिना दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे स्वर्गदूतों को हमारे ऊपर देखने के लिए नियुक्त किया जाता है, और अगर हम खुद को उनकी संरक्षकता के तहत रखते हैं तो हर खतरे में हमारे दाहिने हाथ में होंगे। जब अनजाने में हमें गलत प्रभाव को खत्म करने के खतरे में हैं, तो स्वर्गदूत हमारी ओर से होंगे। हमें एक बेहतर पाठ्यक्रम के लिए प्रेरित करेंगे, हमारे लिए हमारे शब्दों का चयन करेंगे और हमारे कार्यों को प्रभावित करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रभाव शांत हो सकता है, लेकिन दूसरों को मसीह और स्वर्गीय दुनिया के लिए आकर्षित करने में शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। समय। हमारा समय ईश्वर का है, हर पल उसका है, और हम इसे उसकी महिमा में सुधार करने के लिए सबसे अधिक दायित्व के अधीन है। मेरे द्वारा दी गई प्रतिभा में से मुझे अपने समय की तुलना में अधिक हिसाब की आवश्यकता है।
समय का मूल्य संगणना से परे है। मसीह ने हर पल को अनमोल माना, और वो ये है कि हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है जिसे दूर किया जा सकता है। हमारे पास कुछ दिनों की परिवीक्षा है जिसमें अनंत काल की तैयारी है। हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है, स्वार्थी भक्ति करने का समय नहीं है, पाप के भोग का समय नहीं है। अब ये है कि हमें भविष्य अमर जीवन के लिए चरित्र बनाने हैं। अब ये है कि हम खोज के निर्णय के लिए तैयार हैं। जब वे जीना शुरू करते हैं तो मानव परिवार मुश्किल से मरने के कगार पर आ जाता है, और जब तक अनंत जीवन के संबंध में एक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक दुनिया में लगातार श्रम समाप्त हो जाता है। वो व्यक्ति जो अपने लिए और एक ऐसे जीवन के लिए फिट बैठता है जो अमर है, ये अच्छी तरह से है कि वो पैदा हुआ था। हमें समय को भुनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन समय की बर्बादी कभी वापस नहीं मिल सकती। हम इसे एक पल भी वापस नहीं बुला सकते। एकमात्र तरीका जिसमें हम अपने समय को भुनाते हैं वो सबसे अधिक बना रहता है, परमेश्वर के साथ सहकार्यकर्ता होने के नाते छुटकारे की योजना। जो ऐसा करता है वो चरित्र का रूपांतरण करता है। वो शाही परिवार का सदस्य बन जाता है। जो स्वर्गीय राजा का बच्चा है उसे स्वर्गदूतों का साथी माना जाता है।
अब हमारे साथी पुरुषों के उद्धार के लिए श्रम करने का समय है।
कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यदि वे मसीह के कारण पैसा देते हैं तो ये सब उन्हें करने की आवश्यकता है। वो कीमती समय जिसमें वे उसके लिए व्यक्तिगत सेवा कर सकते थे असंबद्ध था, लेकिन ये सभी का विशेषाधिकार और कर्तव्य है जिनके पास ईश्वर को सक्रिय सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और शक्ति है। सभी आत्माओं को मसीह में लाने के लिए काम करना है। धन का दान इसका स्थान नहीं ले सकता। हर पल शाश्वत परिणामों से भरा हुआ है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हम एक मिनट के नोटिस पर सेवा के लिए तैयार रहना है। वो अवसर जो किसी जरूरतमंद आत्मा को बोलने के लिए दिया जाता है वो कभी नहीं मिल सकता है। ईश्वर उस एक से कह सकते हैं, इस रात तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी आवश्यकता होगी, और हमारी उपेक्षा के माध्यम से ईश्वर को कैसे सौंपे दें। जीवन बहुत ही अस्थायी है और सांसारिक मामलों में ध्यान की परंपरा में परवाह किए बिना उन चीजों के लिए एक चिंता का विषय है जो शाश्वत ब्याज की चीजों की तुलना में एक परमाणु है। फिर भी परमेश्वर ने हमें जीवन के अस्थायी मामलों में उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। उस कार्य में परिश्रम उतना ही सच्चा धर्म है जितनी भक्ति है। बाइबल आलस्य को दूर नहीं करती है। यह सबसे बड़ा अभियान है जो हमारी दुनिया को प्रभावित करता है। प्रत्येक पुरुष और महिला जो वास्तव में परिवर्तित है एक मेहनती कार्यकर्ता है।
हमारे समय के सही सुधार पर ज्ञान और मानसिक संस्कष्ट प्राप्त करने में हमारी सफलता पर निर्भर करती है। बुद्धि की खेती को गरीबी, विनम्र मूल या प्रतिकूल परिवेश से रोका नहीं जाना चाहिए। केवल क्षणों को मूल्यवान होने दो। कुछ क्षण इधर और कुछ उधर की बातें में हताश हो सकता है। सुबह के घंटे अक्सर बिस्तर में बर्बाद हो जाते हैं। ट्रैम या रेलवे कारों पर यात्रा या स्टेशन पर प्रतीक्षा करने में बिताया गया समय, भोजन की प्रतीक्षा के क्षण उन लोगों की प्रतीक्षा में जो नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए थक गए थे। यदि कोई पुस्तक हाथ में रखी गई थी और समय के इन टुकड़ों को अध्ययन, पढ़ने या सावधान सोच में सुधार किया गया था तो क्या पूरा नहीं किया जा सकता है? एक दृढ़ उद्देश्य, एक निरंतर उद्योग और समय की सावधानी पूर्वक अर्थव्यवस्था पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी और मानसिक अनुशासन उन्हें बीमार कर देगी जो उन्हें प्रभाव और उपयोगिता की किसी भी स्थिति के लिए योग्य बनाते हैं।
प्रत्येक मसीही का कर्तव्य है कि आदेश की आदतों और घृणा की आदतों को प्राप्त करे। किसी भी चरित्र के काम में धीमी गति से उछाल का कोई बहाना नहीं है जब कोई हमेशा काम पर होता है और काम पूरी नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन और दिल को श्रम में नहीं लगाया जाता है। जो धीमा है और जो एक नुकसान में काम करता है वह यह दावा करता है कि इन दोषों को ठीक किया जाना है। उसे योजना बनाने में अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता है कि कैसे सर्वश्रेष्ठ परिणामों को सुरक्षित करने के लिए समय का उपयोग किया जाए। चातुर्य और विधि के अनुसार कुछ लोग 5 घंटे के रूप में ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे पूरा करेंगे। कुछ लोग जो घरेलू श्रम में लगे हुए हैं वे हमेशा काम में होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। क्योंकि वे समय बचाने के लिए योजना नहीं बनाते हैं, अपने 6 में परिश्रम से वे बहुत कम काम कर पाते हैं। लेकिन सभी जो उधम मचाते हैं सुस्त आदतों को दूर कर सकते हैं। अपने काम में उन्हें एक निश्चित उद्देश्य देना चाहिए। यह निर्धारित करें कि किसी दिए गए कार्य के लिए कितने समय की आवश्यकता है और फिर दिए गए समय में कार्य को पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास करें। इच्छा शक्ति का अभ्यास हाथों को चतुराई से आगे बढ़ाएगा।
खुद को हाथ में लेने और सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्प के माध्यम से व्यक्ति गलत तरीके से कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो सकता है या अपनी शक्तियों को खेती करके वे बहुत अच्छी सेवा करने की क्षमता प्राप्त कर सकते। तब वे कहीं भी और खुद को मांग में पाएंगे। हर जगह वो सभी के पराहन लायक है। कई बच्चों और युवाओं द्वारा समय बर्बाद किया जाता है कि घर के बोझ उठाने में खर्च हो सकता है और इस प्रकार पिता और माता में एक प्रेमपूर्ण रुचि दिखा सकता है। युवा अपने मजबूत युवा कंधों को कई जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं जो किसी को वहन करना चाहिए।
अपने शुरुआती वर्षों से मसीह का जीवन बयान गतिविधि का जीवन था। वो खुद को खुश करने के लिए नहीं रहता था। वे अनंत ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपने पिता यूसुफ के साथ बढ़ई का व्यापार के रूप में काम किया। उनका व्यापार काफी महत्वपूर्ण था। वो चरित्र निर्माता के रूप में दुनिया में आए थे और इस प्रकार उनके सभी काम सही थे। अपने सभी धर्मनिरपेक्ष परिश्रम के वो अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा बदल रहे पात्रों में उतनी ही पूर्णता लाया जो हमारा उदाहरण है। माता पिता को अपने बच्चों को समय का मूल्य और सही उपयोग सिखाना चाहिए। उन्हें सिखाए कि कुछ ऐसा करे जो ईश्वर का सम्मान करे और मानवता को आशीर्वाद दे। इसके लिए प्रयास करने लायक है। अपने शुरुआती वर्षों में भी वे मिशनरी हो सकते हैं।
माता पिता अपने बच्चों को कुछ नहीं करने की अनुमति देने की तुलना में अधिक पाप नहीं कर सकते। बच्चे जल्द ही आलस से प्यार करना सीख जाते हैं और वे बड़ोज होकर बेकार मर्द और औरत बन जाते हैं। जब वे अपने जीवन को अर्जित करने और रोजगार खोजने के लिए पर्याप्त बूढ़े हो जाते हैं तो वे एक आलसी ड्रोन तरीके से काम करते हैं, फिर भी उतना ही भुगतान पाने की अपेक्षा करते हैं जितना कि वे विश्वास योग्य थे। श्रमिकों के इस वर्ग और उन लोगों के बीच विश्वव्यापी अंतर है जो महसूस करते हैं कि उन्हें वफादार भंडारी होना चाहिए। आलसी लापरवाह आदतों के कारण धर्मनिरपेक्ष कार्य को धार्मिक जीवन मिलाया जाएगा और ईश्वर के लिए किसी भी कुशल सेवा को करने के लिए किसी को भी अनफिट किया जाएगा। मेहनती श्रम के माध्यम से कई लोग दुनिया के लिए एक आशीर्वाद हो सकते हैं, आलस्य के माध्यम से बर्बाद हो गए हैं। रोजगार का अभाव और लगातार उद्देश्य 1000 प्रलोभनों के द्वारा खोलता है। दुष्ट साथी और शातिर आदतें मन और आत्मा को दर्शाती है और उसका परिणाम इस जीवन और आने वाले जीवन के लिए बर्बाद हो जाता है। हम किसी भी कार्य में संलग्न हैं, ईश्वर का शब्द हमें व्यापार में आलसी नहीं, आत्मा में परोपकार प्रभु को सेवा करना सिखाता है। जो कुछ भी करने के लिए दिया जाए उसे अपनी पूरी ताकत से करो, ये जानकर कि तुम प्रभु की विरासत का प्रतिफल प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम प्रभु मसीह की सेवा करोगे। रोमियो 12:11, सभोपदेशक 9:10, कुलुस्सियों 3:24। स्वास्थ्य
एक आशीर्वाद है जिसमें से कुछ मूल्य की सराहना करते हैं। अभी तक इस पर हमारी मानसिक और शारीरिक शक्तियों की दक्षता काफी हद तक निर्भर करती है। हमारे आवेगों और जुनून ने शरीर में अपनी जगह है और शारीरिक रूप से सबसे अधिक हमारी प्रतिभा को उच्चतम उपयोग में लाया जा सके। जो कुछ भी शारीरिक शक्ति को कमजोर करता है वो मन को प्रभावित करता है और सही और गलत के बीच भेदभाव करने में कम सक्षम बनाता है। हम अच्छा करने की इच्छा शक्ति को कम करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसे हम सही होना जानते हैं।
हमारी भौतिक शक्तियों का दुरुपयोग उस समय की अवधि को छोटा करता है जिसमें हमारे जीवन का उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए किया जा सकता है और हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। अपने आप को गलत आदतों की अनुमति देकर, देर से घंटे रखकर स्वास्थ्य के लिए नींव रखते हैं, शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा करके अधिक काम करने वाले मन या शरीर द्वारा हम तंत्रिका तंत्र को असंतुलित करते हैं। जो लोग अपने जीवन को छोटा करते हैं और प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हुए सेवा के लिए खुद को अनफिट करते हैं, वे ईश्वर के प्रति लूट के दोषी हैं। वे अपने साथी आदमियों को भी लूट रहे हैं। दूसरों को आशीर्वाद देने का अवसर जिस कार्य के लिए ईश्वर ने उन्हें संसार में भेजा था, उनके अपने कर्मों में कमी आई है और उन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए उकसाया है जो उस समय की संक्षिप्त अवधि में है जो उन्होंने पूरा किया होगा। प्रभु हमें दोषी ठहराता है जब हमारी गलत आदतों द्वारा हम इस प्रकार अच्छे संसार को वंचित करते हैं। भौतिक कानून का उल्लंघन नैतिक कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ईश्वर नैतिक कानूनों के लेखक के रूप में भौतिक कानूनों के लेखक है। उनका कानून हर तंत्रिका, हर पेशी,
हर संकाय पर अपनी उंगली से लिखा गया है, जिसे मनुष्य को सौंपा गया है, और हमारे जीव के किसी भी हिस्से का हर दुरुपयोग उस कानून का उल्लंघन है।
सभी को मानव नक्शे का एक बुद्धिमान ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु के कार्य करने के लिए आवश्यक स्थिति में रख सकें। उन्हें भौतिक जीवन को सावधानीपूर्वक संरक्षित और विकसित करना है कि मानवता के माध्यम से दिव्य प्रकृति अपनी पूर्णता में प्रकट हो सकती है। शारीरिक जीवों का संबंध आध्यात्मिक जीवन को शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इसे घर में और स्कूल में सावधानीपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। सभी को उनकी शारीरिक संरचना और प्राकृतिक जीवन को नियंत्रित करने वाले कानूनों से परिचित होने की आवश्यकता है। वो जो अपने भौतिक अस्तित्व के नियमों के लिए अज्ञानता में रहता है, और सभी को खुद को जीवन और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम संभव संबंध में रखना चाहिए। हमारी आदतें एक व्यक्ति के नियंत्रण में आ गई है जो खुद ईश्वर के नियंत्रण में है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरंथियों 6:19-20। शक्ति। हमें ईश्वर से प्रेम करना है, केवल हृदय, मन और आत्मा के नहीं, बल्कि पूरी शक्ति से। इसमें भौतिक शक्तियों का पूर्ण बुद्धिमान उपयोग शामिल है।
मसीह लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक चीजों में एक सच्चा कार्य करता था। अपने सभी कार्यों में उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया। स्वर्ग और पृथ्वी की चीजें अधिक निकटता से जुड़ी है। कई लोगों की तुलना में सीधे मसीह की देखरेख में है। ये मसीह था जिसने पहले सांसारिक झांकी की व्यवस्था की योजना बनाई थी। उसमें सुलेमान के मंदिर के निर्माण के संबंध में हर विनिर्देश दिया। जो अपने सांसारिक जीवन में नासरत गांव में एक बढ़ाई के रूप में काम करता था, वो स्वर्गीय वास्तुकार था जिसने पवित्र इमारत की योजना को चिन्हित किया था, जहां उसके नाम का सम्मान किया जाना था। ये मसीह था जिसने सबसे कुशल और सुंदर कारीगरी को निष्पादित करने के लिए सारणी ज्ञान के बिल्डरों को दिया था। उन्होंने कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकालकर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने और लकड़ी के खोदने में काम करें। और सुन, मैं दान के गोत्र अहिसामाक को उसके संग करा देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सभी के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सभी को वे बनाए। निर्गमन 31:2-6।
ईश्वर की इच्छा है कि हर पंक्ति में उनके कार्यकर्ता, उनके पास जो कुछ भी है, उनके दाता के रूप में उन्हें देखें। सभी आविष्कारों और सुधगारों में उनका स्रोत है, जो परामर्श में अद्भुत है और काम करने में उत्कृष्ट है। चिकित्सक के हाथ का कुशल स्पर्श, तांत्रिका और मांसपेशियों पर उसकी शक्ति, शरीर के नाजुक जीव का ज्ञान, दिव्य शकित का ज्ञान, दुख की ओर से उपयोग करता है। वह जिस कौशल के साथ बढ़ई हथौड़ा का उपयोग करता है, वह ताकत जिसके साथ लोहार एनावल रिंग बनाता है, ईश्वर से आता है। उन्होंने पुरुषों को प्रतिभा के साथ सौंपा है, और वह उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें परामर्श के लिए देखें। हम जो भी काम करते हैं, उसे जिस भी विभाग में रखा जाता है, वह हमारे दिमाग को नियंत्रित करने की इच्छा रखता है कि हम सही काम कर सकें। धर्म और व्यवसाय दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक है। बाइबल धर्म को हम जो भी कहते हैं उसके साथ जुड़ता है। दिव्य और मानव एजेंसियों को अस्थायी रूप से आध्यात्मिक उपलब्धियों के रूप में अस्थायी रूप से संयोजित करना है। वे सभी मानवीय गतिविधियों में एकजुट यांत्रिक
और कृषि प्रयोगशालाओं में व्यापारिक और वैज्ञानिक उद्यमों में एकजुट होना है। मसीही गतिविधि अपनाई गई हर चीज में सहयोग होना चाहिए। ईश्वर ने उन सिद्धांतों की घोषणा की है जिन पर अकेले ये सहयोग संभव है। उसकी महिमा सभी का मकसद होना चाहिए जो उसके साथ मजदूर है। हमारा सारा काम प्रेम से ईश्वर के साथ और उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए।
किसी धार्मिक सेवा में भाग लेने के दौरान भवन का निर्माण करते समय ईश्वर की इच्छा को पूरा करना आवश्यक है, और अगर दलालों चरित्र निर्माण पर सही सिद्धांतों को लाने हैं तो हर इमारत के निर्माण में वे अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ेंगे। लेकिन ईश्वर सबसे बड़ी प्रतिभा या सबसे शानदार सेवा के स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वेदी पर आजीविका न हो, एक जीवन भस्म बलिदान। जड़ को पवित्र होना चाहिए, अन्यथा ईश्वर को कोई फल स्वीकार्य नहीं हो सकता है। यहोवा ने दानियेल और यूसुफ चतुर प्रबंधकों को बनाया। वो उनके माध्यम से जीत सकता था क्योंकि वे अपने स्वयं के झुकाव को खुश करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को खुश करने के लिए जीतते थे।
दानियेल का मामला हमारे लिए एक सबक है। ये इस तथ्य को प्रकट करता है कि एक व्यापारी जरूरी एक तेज नीति आदमी नहीं है। उसे हर कदम पर ईश्वर द्वारा निर्देश दिया जा सकता है। बाबुल राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दानियेल ईश्वर के एक भविष्यवक्ता के रूप में दानियेल स्वर्गीय प्रेरणा का प्रकाश प्राप्त करते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षी राजनेताओं को ईश्वर के शब्द में घास के रूप में दर्शाया जाता है, जो बड़े होते हैं और घास के फूल के रूप में दिखते हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा है कि उनकी सेवा में बुद्धिमान पुरुष काम की विभिन्न रेखाओं के लिए योग्य हों। ऐसे व्यवसायियों को आवश्यकता है जो सत्य के भव्य सिद्धांतों को अपने सभी लेन देन में बदल देंगे और उनकी प्रतिभा को पूरी तरह से अध्ययन और प्रशिक्षण द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। अगर काम की किसी भी पंक्ति में पुरुषों को बुद्धिमान और कुशल बनने के अवसरों में सुधार करना होगा। ये वे हैं जो हमारी दुनिया में परमेश्वर के राज्य के निर्माण अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। दानियेल से हम सीखते हैं कि उनके सभी व्यापारिक लेन देन जब निकटतम जांच के अधीन थे तो एक भी गलती या त्रुटि नहीं पाई जा सकती थी। वो इस बात का एक नमूना था कि प्रत्येक व्यवसायी क्या हो सकता है। उनका इतिहास बताता है कि मस्तिष्क और हड्डी और मांसपेशियों की शक्ति, हृदय और जीवन की शक्ति को ईश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है। पैसा।
ईश्वर भी पुरुषों को साधन सौंपता है। वह उन्हें धन पाने की शक्ति देता है। वह स्वर्ग की ओस के साथ जाता, वर्षा की बौछारों के साथ पृथ्वी को पानी देता है। वह सूर्य के प्रकाश को देता है जो पृथ्वी को गर्म करता है। प्रकृति की चीजों को जीव में जागृत करता है, फलता फूलता है। वह अपनी खुद को वापसी के लिए पूछता है। हमारा पैसा हमें नहीं दिया गया है कि हम खुद को सम्मानित और गौरवान्वित कर सकें। विश्वास योग्य भंडारी के रूप में हम इसे ईश्वर के सम्मान और गौरव के लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके साधनों का केवल एक हिस्सा ईश्वर का है। जब उन्होंने धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक हिस्से का अलग कर दिया है तो वे शेष का अपने जैसा मानते हैं, जैसे कि वे फिट देखते हैं। लेकिन इसमें वे गलती करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी वो प्रभु का है और हम लेकिन इसमें वे गलती करते हैं हमारे पास जो कुछ भी वो प्रभु का है और हम उसके उपयोग के लिए उसके प्रति जवाबदेह हैं। हर पैसे के उपयोग में ये देखा जाएगा कि क्या हम ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं और अपने पड़ोसी को भी। धन का बहुत मूल्य है क्योंकि ये बहुत अच्छा कर सकता है। ईश्वर के बच्चों के हाथों में भूख के लिए भोजन है, प्यासे के लिए पानी है, नंगे के लिए कपड़े हैं। ये शोषितों के लिए रक्षा और बीमारों की मदद का साधन है। लेकिन धन का बालू से अधिक कोई महत्व नहीं है। केवल इसे जीव की आवश्यकताओं के लिए दूसरों को आशीर्वाद देने और मसीह के कारण को आगे बढ़ने में उपयोग करने के लिए रखा जाता है।
बटोरा हुआ धन केवल बेकार ही नहीं, ये एक अभिशाप है। इस जीवन में ये आत्मा के लिए एक घिनौनापन है। स्वर्ग के खजाने से दूर आकष्टयों को खींचता है। ईश्वर के महान दिन में प्रतिभाओं और उपेक्षित अवसरों के लिए इसके गवाह इसके स्वामी की निंदा करेंगे। इंजील में कहा गया है, हे धन वाले सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्लाकर चिल्लाकर रोओगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में कोई लग गई है और वो कोई तुम पर गवाही देगी और आग की तरह तुम्हारा मांस खाएगी। तुमने अंतिम युग से धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है। और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। याकूब 5:1-4। लेकिन यीशु ने किसी भी माध्यम का प्रयोग नहीं करा। अर्थव्यवस्था में उनका सबक उन अवशेषों को इकट्ठा करना है जो कुछ भी याद नहीं करते हैं, उनके सभी अनुयायियों के लिए है। 1 यूहन्ना 6:12। उससे पता चलता है कि उसका धन ईश्वर की एक प्रतिभा है जो आर्थिक रूप से उसका उपयोग करेगा और वो उसे बचाने का कर्तव्य महसूस करेगा जो वो कर सकता है। जितना अधिक हम प्रदर्शन और आत्मभोग में खर्च करते हैं, उतने ही कम भूखे को खाना खिलाना पड़ सकता है और नग्न को कपड़े देना पड़ सकता है। हर पैसे अनावश्यक रूप से अच्छा करने के अनमोल अवसर के खर्च से वंचित करता है। ये सम्मान और गौरव के देवता को लूट रहा है जो कि उनकी सौंपी गई प्रतिभाओं के सुधार के माध्यम से उनके पास वापस आना चाहिए।
दयालु आवेग, दयालु स्नेह, उदार आवेग और आध्यात्मिक चीजों की एक त्वरित आशंका की कीमती प्रतिभाएं है और एक वजनदार जिम्मेदारी के तहत अपने पास रखते हैं। सभी को ईश्वर की सेवा में उपयोग किया जाना है, लेकिन यहां कई गलतियां हैं। इन गुणों के कब्जे से संतुष्ट वे उन्हें दूसरे के लिए सक्रिय सेवा में लाने में विफल होते हैं। वे अपने आप को चापलूसी करते हैं कि अगर उनके पास अवसर था, अगर परिस्थितियां अनुकूल थीं, तो वे एक महान और अच्छा काम करेंगे। लेकिन उन्हें मौके का इंतजार है। वे गरीब कंजूस की संकीर्णता का तिरस्कार करते हैं। वे देखते हैं कि वह स्वयं के लिए जी रहा है और वह अपना दुरुपयोग की प्रतिभाओं के लिए जिम्मेदार है। अपने मतलब के पड़ोसियों की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल है, लेकिन वे खुद को धोखा दे रहे हैं। अप्रयुक्त गुणों के आधिपत्य से ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो लोग बड़े स्नेह रखते हैं, उनके लिए ईश्वर के प्रति दायित्व है कि वे केवल अपने दोस्तों पर ही नहीं बल्कि उन सभी की मदद करें जिन्हें उनकी मदद की जरूरत है। सामाजिक लाभ प्रतिभा है और हमारे प्रभाव की पहुंच के भीतर सभी के लाभ के लिए उपयोग किया जाना है। वह प्रेम जो केवल कुछ को ही दया देता है, वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। यह किसी भी तरह से आत्माओं की भलाई या ईश्वर की महिमा के लिए काम नहीं करेगा। इस प्रकार जो अपने गुरु की प्रतिभा को छोड़ देते हैं, वे उससे भी अधिक दोषी हैं जिनके लिए वे ऐसी अवमानना करते हैं। उनके लिए यह कहा जाएगा, ये तो आपके स्वामी की इच्छा है लेकिन ऐसा नहीं किया। उपयोग द्वारा गुणा की गई प्रतिभा।
उपयोग की जाने वाली प्रतिभाएं कई गुना प्रतिभा होती है। सफलता मौके या भाग्य का परिणाम नहीं है, वह ईश्वर की अपनी सिद्धता, विश्वास और विवेक का प्रतिफल है। पुण्य और दष्ट प्रयास का परिचायक है। प्रभु की इच्छा है कि हम अपने घर उपहार का उपयोग करें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास उपयोग के लिए अधिक से अधिक उपहार होंगे। वह अलौकिक रूप से हमें उस योग्यता से संपन्न नहीं करता है जिसकी हमारे पास कमी है, लेकिन जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए हर संकाय को बढ़ाने और मजबूत हमारी ताकत बढ़ेगी। जब हम पवित्र आत्मा के काम करने के लिए खुद को साधन के रूप में उपजते हैं, तो ईश्वर की कशपा हमारे लिए पुराने झुकावों को नकारने, शक्तिशाली प्रवृत्ति को दूर करने और नई आदतों को बनाने के लिए काम करती है। जैसा कि हम आत्मा के उत्साह का पालन करते हैं, हमारे दिल को उसकी शक्ति के अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए और अधिक और बेहतर काम करने के लिए बढ़ाया जाता है। गुप्त ऊर्जाएं उत्तेजित होती है और पक्षाघात संकायों को नया जीवन मिलता है।
विनम्र कार्यकर्ता जो आज्ञाकारी रूप से ईश्वर के आह्वान का जवाब देता है,
वो दिव्य सहायता प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित हो सकता है। इतना महान और पवित्र को स्वीकार करने के लिए एक जिम्मेदारी ही चरित्र को बुलंद करती है। यह सर्वोच्च मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बुलाता है और मन और हृदय को मजबूत और शुद्ध करता है। ईश्वर की शक्ति में विश्वास के माध्यम से यह अद्भुत है कि एक कमजोर आदमी कितना मजबूत हो सकता है, उसने अपने प्रयासों को कैसे तय किया, महान परिणाम कैसे प्राप्त होंगे। वो जो थोड़े से ज्ञान के साथ शुरू होता है एक विनम्र व्यंग में, और वो जानता है कि वो आगे के ज्ञान के लिए लगन से खोजते हुए पूरी भारी खजाने को अपनी मांग का इंतजार कर पाएगा। जितना अधिक वो प्रकाश प्रदान करना चाहता है उतना अधिक प्रकाश उसे प्राप्त होगा। अधिक से अधिक ईश्वर के शब्द को दूसरों को समझाने की कोशिश करता है, आत्माओं के लिए प्यार के साथ ये खुद को जितना स्पष्ट करता है, हम अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जितना अधिक ज्ञान और शक्ति हमारे पास होगी, मसीह के लिए किया गया हर प्रयास स्वयं को आशीर्वाद देने में प्रतिक्रिया करेगा। अगर हम उसकी महिमा के लिए हमारे साधनों को उपयोग करते हैं तो वो हमें दे देगा।
जैसे कि हम दूसरों को मसीह के लिए जीतना चाहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में आत्माएं के बोझ को सहन करना, हमारे अपने दिल ईश्वर की कृपा के तेज प्रभाव से धड़केंगे, हमारे स्वयं के स्नेह अधिक दिव्य उत्साह के साथ चमकेगा, हमारा पूरा मसीही जीवन एक वास्तविकता से अधिक समृद्ध, अधिक प्रार्थनापूर्ण होगा।
परमेश्वर को जानने के लिए मनुष्य के मूल्य का अनुमान हृदय की क्षमता के अनुसार स्वर्ग में लगाया जाता है। ये ज्ञान वो वसंत है जिसमें से सारी शक्ति बहती है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है कि हर संकाय परमात्मा के मन का संकाय हो सके, और वो कभी मानव मन को परमात्मा के साथ लाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें दुनिया के लिए अपनी कशपा प्रकट करने में मसीह के साथ सहयोग का विशेषाधिकार प्रदान करता है कि हम स्वर्गीय चीजों को बढ़ा ज्ञान प्राप्त कर सकें। यीशु की खोज में हम परमेश्वर के विषय में और अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त कर सकते हैं, और निहारने से हम बदल जाएंगे। हमारे साथी पुरुषों के लिए अच्छाई, प्यार हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। हम एक ऐसे चरित्र का विकास करते हैं जो ईश्वरीय चरित्र का प्रतिरूप है। उसकी समानता में बढ़ते हुए हम ईश्वर को जानने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। अधिक से अधिक स्वर्गीय दुनिया के साथ मैत्री में प्रवेश करते हैं, और हमारे पास अनंत काल के ज्ञान और ज्ञान के धन को प्राप्त करने के लिए लगातार बढ़ती शक्ति है। एक प्रतिभा। जिस व्यक्ति को प्रतिभा प्राप्त हुई वो गया और पृथ्वी में खुदाई करके अपने ईश्वर के धन को छिपा दिया।
यह सबसे छोटा उपहार था जिसने अपनी प्रतिभा को छोड़ दिया। इसमें उन सभी को चेतावनी दी जाती है जिन्हें लगता है कि उनके बंदोबस्ती का छोटापन उन्हें मसीह के लिए सेवा से निकाल देता है। यदि वे इतना महान कार्य कर सकते हैं तो वे कितनी खुशी से इसे शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि वे केवल छोटी चीजों में सेवा कर सकते हैं, वे खुद को कुछ भी नहीं करने के लिए उचित समझते हैं। इसमें वे गलती करते हैं। उपहारों के वितरण में प्रभु चरित्र का परीक्षण कर रहा है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उपेक्षा करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक बेवफा सेवक साबित कर दिया। अगर उसे 5 प्रतिभाएं मिल जाती तो वह उन्हें भी दफन कर देता, क्योंकि वह उन्हें दफना देता। एक प्रतिभा के उनके दुरुपयोग ने दिखाया कि उसने स्वर्ग के उपहारों का तिरस्कार किया। वो जो इसमें विश्वास योग्य है वो कम से कम विश्वास योग्य भी है। लूका 16:10। छोटी चीजों का महत्व अक्सर कम होता है क्योंकि वे छोटे होते हैं, लेकिन वे जीवन के वास्तविक अनुशासन की बहुत आपूर्ति करते हैं। वास्तव में कोई भी गैर महत्वपूर्ण नहीं है। मसीही जीवन में हमारा चरित्र निर्माण तब पूर्ण होगा जब हम छोटी चीजों के महत्व को समझते हैं। वो जो कम से कम अन्यायपूर्ण है वो बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण है। छोटे छोटे कर्तव्यों में भी अविश्वास करने से मनुष्य अपनी सेवा के निर्माता को लूटता है, जो उसका कारण है।
ये विश्वासघात अपने आप पर प्रतिक्रिया करता है। वह अनुग्रह, शक्ति,
चरित्र का बल पाने में विफल रहता है, जो कि ईश्वर को अनपेक्षित संपूर्ण के माध्यम से प्राप्त होता है। मसीह से अलग रहकर वह शैतान के प्रलोभनों के अधीन है और वह मास्टर के लिए अपने काम में गलतियां करता है, क्योंकि वह छोटी चीजों में सही सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नहीं होता है। वह उन महान मामलों में ईश्वर आज्ञाओं का पालन करने में विफल रहता है जिन्हें वह अपने विशेष कार्य के रूप में मानता है। जीवन के मामूली विवरणों से निपटने में पोषित दोष अधिक महत्वपूर्ण मामलों में गुजरते हैं। वह उन सिद्धांतों पर कार्य करता है जिनके लिए वह स्वयं आदि हो चुका है। इस प्रकार क्रिया में दोहराई जाती है, आते आते चरित्र का निर्माण करती है और चरित्र द्वारा हमारी नियति समय और अनंत काल के लिए तय की जाती है। छोटी छोटी बातों में विश्वास करके ही आत्मा की बड़ी जिम्मेदारियों के तहत निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ईश्वर बाबुल के महापुरुषों के संबंध में दानियेल और उसके साथियों को लाया कि ये कट्टर पुरुष सच्चे धर्म के सिद्धांतों से परिचित हो सकें। मूर्ति पूजकों के एक देश के बीच दानियेल को ईश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व करना था। इतने विश्वास और सम्मान की स्थिति के लिए वह कैसे फिट हो गया? ये उनका छोटी छोटी बातों में उनका विश्वास था जिन्होंने उनके पूरे जीवन को जटिलता दी। उन्होंने ईश्वर को सबसे छोटे कर्तव्यों में सम्मानित किया और ईश्वर ने उनका सहयोग किया।
दानियेल उसके साथियों के लिए ईश्वर ने सभी सीखने और ज्ञान में ज्ञान और कौशल दिया और दानियेल के पास सभी अपने सपने थे। दानियेल 1:17।
जैसे कि परमेश्वर ने दानियेल को बाबुल में उसके लिए गवाही देने के लिए बुलाया था, इसलिए वो आज हमें दुनिया में उसका गवाह कहता है। सबसे छोटे और साथ ही जीवन के सबसे बड़े मामलों में वो पुरुषों से उनके राज्य के सिद्धांतों को प्रकट करने की इच्छा रखता है। धरती पर अपने जीवन में मसीह ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का पाठ पढ़ाया। छुटकारे का महान कार्य उनकी आत्मा पर तौला गया, जैसा कि वो सिखा रहा था और उपचार कर रहा था। मन और शरीर की सभी ऊर्जाओं पर अत्यधिक कर लगाया गया था, फिर भी उन्होंने जीवन के प्रकृति में सबसे सरल चीजों पर ध्यान दिया, उनके सबसे शिक्षाप्रद था। वे जिनमें प्रकृति की सरल बातों से उन्होंने परमेश्वर के राज्य की महान सच्चाइयों का वर्णन किया था। उसने अपने सेवकों की जरूरतों के नजरअंदाज नहीं किया, उसके कान ने जरूरत का हर रोना सुना। वो भीड़ में पीड़ित महिला के स्पर्श के लिए जाग रहा था। विश्वास के बहुत स्पर्श एक प्रतिक्रिया लाया। जब वो मरे हुओं में से जायरीस की बेटी की तरफ बढ़ा तो उसने उसके माता पिता को याद दिलाया कि उसके पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए। जब उनकी अपनी शक्तिशाली शक्ति से वो कब्र से उठे तो उन्होंने तय करने के लिए कब्र के कपड़ों का तिरस्कार नहीं किया और उचित स्थान पर सावधानी पूर्वक रख, जिससे उन्हें दूर रखा गया था।
जिन कार्यों को मसीही कहा जाता है उन्हें आत्माओं के उद्धार के लिए मसीह के साथ सहयोग करना है। यह काम हमने उसके साथ वाचा में प्रवेश किया है। काम की उपेक्षा करने के लिए मसीह के प्रति अरुचि साबित करना है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर उनके वफादार कर्तव्यनिष्ठ ध्यान की मिसाल पर चलना चाहिए। ये मसीही प्रयास और कौशल और ज्ञान को समझने में प्रभाव की हर पंक्ति में सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि हम ईश्वर और उनकी शक्ति में मानव हृदय पर काम करने में विश्वास करते हैं। जिन लोगों के पास उपहारों का बड़ा बंदोबस्त नहीं है उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करना चाहिए है। विश्वासपूर्वक अपने पात्रों में हर कमजोर बिंदु की रक्षा करनी चाहिए है। इसे मजबूत बनाने के लिए दिव्य अनुग्रह की मांग करनी चाहिए है। जीवन की प्रत्येक क्रिया को हम विश्वास और निष्ठा से बुनते हैं, उन गुणा की खेती करते हैं जो हमें कार्य पूरा करने में सक्षम बनाएंगे। लापरवाही की आदत को पूरी तरह से दूर किया जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ये भूलकर त्रुटियों को दूर करने के लिए एक पर्याप्त बहाना है, लेकिन क्या वे औरों के साथ साथ बौद्धिक संकायों के अधिकारी नहीं हैं?
तब उन्हें अपने मन को प्रतिशोधी होने के लिए अनुशासित करना चाहिए। लापरवाही से पाप करना, भूल जाना पाप है। यदि आप लापरवाही की आदत बनाते हैं तो आप अपनी खुद की आत्मा के उद्धार की उपेक्षा कर सकते हैं और अंत में पाते हैं कि आप ईश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं हैं।
महान सच्चाइयों को छोटी चीजों में लाना चाहिए। व्यवहारिक धर्म को दैनिक जीवन के नीच कर्तव्यों में ले जाना है। किसी भी आदमी के लिए सबसे बड़ी योग्यता है कि वह प्रभु के वचन का पालन करे, क्योंकि वे कुछ घिनौने धार्मिक कार्यों से नहीं जुड़े हैं। कई लोग महसूस करते हैं कि उनका जीवन बेकार है, कि वे परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक गलती है। अगर काम उनका वह है जो किसी को करना चाहिए, तो उन्हें खुद को ईश्वर के महान घर में बेकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। नम्र कामों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी ईमानदार कार्य एक आशीर्वाद है और इसमें विश्वास योग्यता उच्च विश्वासों के लिए एक प्रशिक्षण साबित हो सकती है। हालांकि नीचता स्वयं के पूर्ण संपूर्ण के साथ ईश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य उतना ही स्वीकार है जितना सर्वोच्च सेवा। कोई भी पेशकश छोटी नहीं है, यह दिल और आत्मा की खुशी के साथ दिया जाता है।
जहां कहीं भी हम मसीह के विषय में बोलते हैं, हम उस कर्तव्य को अपनाते हैं जो स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यदि यह घर में है तो घर को सुखद स्थान बनाने के लिए स्वेच्छा और ईमानदारी से पकड़ें। यदि आप एक मां हैं तो अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें। यह वास्तव में ईश्वर के लिए एक काम है, जैसे कि पुलपिट पर याजक का। यदि आपका कर्तव्य रसोई में है तो एक आदर्श बनाने के लिए ऐसा भोजन तैयार करें जो पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। और कि आप भोजन तैयार करने में सबसे अच्छे सामग्री को याद करते हैं, कि आप अपने दिमाग को सबसे अच्छा विचार देने के लिए तैयार करें। यह मिट्टी तक आपका काम है, या किसी अन्य व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होना। वर्तमान कर्तव्य को सफल बनाना है। अपना दिमाग लगाओ कि तुम क्या कर रहे हो, आप किन कार्यों में मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा वह तुम्हारे लिए पर करेगा वैसा ही करो। हालांकि आपकी प्रतिभा छोटी है, ईश्वर के लिए एक जगह है। वह एक प्रतिभा जो बुद्धिमानी से उपयोग की जाती है, अपने नियत कार्य को पूरा करेगी। थोड़े से कर्तव्यों में विश्वास रखकर हम जोड़ घटाव की योजना पर काम कर रहे हैं और वो हमारे लिए गुणा की योजना पर काम करेगा। ये छोर उनके काम में सबसे कीमती प्रभाव बन जाएंगे।
एक छोटे से कर्तव्यों के प्रदर्शन के माध्यम से सोने के धागों की तरह जीवित आस्था को लेने दें, तब सभी दैनिक कार्य मसीही विकास को बढ़ावा देंगे। यीशु के सामने नित्य खोज होगी, उसके लिए प्यार हर चीज के लिए महत्वपूर्ण शांति देगा। इस प्रकार हमारी प्रतिभाओं के सही उपयोग के माध्यम से हम खुद को एक सुनहरी श्रृंखला से उच्च दुनिया से जोड़ सकते हैं। ये सच्चा पवित्रीकरण है। संस्कार के लिए ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में दैनिक कर्तव्यों के हसमुख प्रदर्शन में शामिल है। लेकिन मसीही किसी महान काम के लिए उन्हें लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वे जीवन के सामान्य कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में विफल होते हैं। ये उन्हें निर्बद्ध लगते हैं। दिन प्रतिदिन के ईश्वर के अपनी आस्था दिखाने के लिए अवसर खो देते हैं। जब वे किसी महान कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो जीवन बीत जाता है। इसके उद्देश्य प्रभावित हो जावे हैं, इसका कार्य अस्वीकार्य हो जाते हैं। प्रतिभाओं को वापस किया गया। एक लंबे समय के बाद उन सेवकों के ईश्वर और उनके प्रतिध्वनि, जब प्रभु अपने सेवकों का हिसाब लेता है तो हर प्रतिभा की वापसी की जाँच की जाएगी। इससे किए गए कार्यकर्ता के चरित्र का पता चलता है।
जिन लोगों ने 5 और 2 प्रतिभाएं प्राप्त की है, वे प्रभु के उपहार में अपनी वर्षद्ध के साथ लौटाते हैं। ऐसा करने में वे अपने लिए कोई योग्यता नहीं होने का दावा करते हैं। उनकी प्रतिभा वे हैं जो उन्हें वितरित की गई है। उन्होंने अन्य प्रतिभाओं को प्राप्त किया है, लेकिन जमा राशि को हासिल करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। वे देखते हैं कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। पूंजी थी प्रभु का सुधार उसका है। यदि उद्धारकर्ता ने प्यार और अनुग्रह नहीं दिया
तो वे अनंत काल के लिए दिवालिये हो जाते हैं। लेकिन जब गुरु को प्रतिभा प्राप्त होती है तो वो श्रमिकों को मंजूरी देता है और पुरस्कार देता है जैसे कि उनकी योग्यता है। उसका प्रतिज्ञान आनंद और संतुष्टि से भरा है। वो इस बात से प्रसन्न होता है कि वो उन्हें आशीर्वाद दे सकता है। प्रत्येक सेवा और हर बलिदान के लिए उन्हें उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं कि ये ऐसा ऋण है जो उनके ऊपर बकाया है, बल्कि इसलिए कि उनका हृदय प्रेम और कोमलता के साथ बह रहा है। शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। तुम थोड़ी सी वस्तुओं में वफादार रहें, मैं तुम्हें और अधिक अधिकार दूंगा। आओ और अपने पिता की प्रसन्नता में शामिल हों। ये विश्वास योग्यता ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रेममयी सेवा है जो ईश्वरीय अनुमोदन को जीत लेती है। पवित्र आत्मा के प्यार प्रत्येक आवेग पुरुष को अच्छाई और ईश्वर की ओर अग्रसर करते हैं, जिसका उल्लेख स्वर्ग की पुस्तकों में किया गया है। एक दिन ईश्वर का दिन है जिसके माध्यम से उन्होंने जो काम किया है उसकी प्रशंसा की जाएगी।
वे प्रभु के आनंद में प्रवेश करेंगे जैसे कि वे अपने राज्य में देखते हैं, जिन्हें उनके साधन के माध्यम से भुनाया गया है और उन्हें वहां उनके काम में भाग लेने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उन्होंने यहां उनमें भाग लेकर इसके लिए एक फिटनेस प्राप्त की है। हम जो स्वर्ग में होंगे वो इस बात का प्रतिबिंब है कि अब चरित्र और पवित्र सेवा में है। मसीह जिसने स्वयं से कहा, मनुष्य का पुत्र सेवकाई कराने नहीं आया परंतु सेवा करने आया है, मत्ती 20:28। ये पृथ्वी पर उसका काम, स्वर्ग में उसका काम है, और इस दुनिया में मसीह के साथ कार्य करने के लिए हमारा पुरस्कार आने वाली दुनिया में उसके साथ काम करने की अधिक शक्तिशाली और व्यापक विशेषाधिकार है। तब जिसको एक तोड़ा मिला उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं बोता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। इस प्रकार पुरुष ईश्वर के उपहारों की उपेक्षा करते हैं। वे ईश्वर को गंभीर और अत्याचारी के रूप में देखते हैं, जैसे कि उनकी गलतियों की जासूसी करने और उन्हें निर्णय के साथ देखने के लिए। वे उसे मांगने के लिए दोष लगाते हैं जो उसने कभी नहीं किया है, जहां उसने नहीं बोया झूठा है।
ऐसे कई लोग हैं जो अपने दिल में ईश्वर को एक कठिन स्वामी होने के कारण दोष लगाते हैं, क्योंकि वह अपनी संपत्ति और उनकी सेवा का दावा करता है। लेकिन हम ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं ला सकते जो उसका है, सभी वस्तुएं उसी से हैं। राजा दाऊद ने कहा, तेरा ही हमने तुझे दिया है, 1 इतिहास 29:14। सभी चीजें ईश्वर की है, न सृष्टि से ही नहीं बल्कि मुक्ति से भी। इस जीवन और आने वाले जीवन के सभी आशीर्वाद को हमें कलवरी के क्रूस के साथ मुहर लगा दी है। इसलिए ये आरोप कि ईश्वर कठोर गुरु है, जहां उसने बोया नहीं है, झूठे हैं। गुरु दुष्ट सेवक के आरोप से इनकार नहीं करता, जैसा कि अन्यायपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी जमीन पर ले जाने से पता चलता है कि उसका आचरण बिना किसी बहाने के है। तरीके और साधन प्रदान किए गए वे जिससे मालिक के लाभ में सुधार किया जा सकता था। तूने कहा, उन्होंने कहा, मेरे पैसे बदलने के लिए डाल दिया है और फिर मेरे आने पर मुझे अपना खुद का ब्याज सहित प्राप्त करना चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिता को न तो इससे अधिक की आवश्यकता है और न ही उससे कम की हमें करने की क्षमता दी गई है। वह अपने नौकरी पर बोझ डालता है कि वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वह हमारे फेम को जानता है, उसे याद है कि हम धूल हैं, भजन 103:14। दिव्य अनुग्रह के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं।
जिस किसी को भी बहुत कुछ दिया गया है उससे वो बहुत कुछ की आवश्यकता होगी, लूका 1:48। हम व्यक्तिगत रूप से एक जोत से कम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो हमारे पास करने की क्षमता है। प्रभु सेवा के लिए हर संभावना को सटीकता के साथ मापता है। क्षमताओं को अधिक से अधिक ध्यान में लाया जाता है जो कि बेहतर होती है।
उन सभी के लिए जो हम अपनी प्रतिभा के सही उपयोग के माध्यम से बन सकते हैं, जो हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। हमें उसके अनुसार न्याय करना चाहिए जो हमने किया है लेकिन पूरा नहीं किया है, क्योंकि हमने अपनी शक्तियों का उपयोग ईश्वर की महिमा करने के लिए किया है। भले ही हम अपनी आत्माओं को ना खोए, हम अपनी अप्रयुक्त प्रतिभाओं का परिणाम अनंत काल में महसूस करेंगे। उन सभी ज्ञान और क्षमता के लिए जिन्हें हमने प्राप्त किया है और जो एक नुकसान होगा, लेकिन जब हम अपने आप को ईश्वर के लिए पूरी तरह से देते हैं और हमारे काम में उनकी दिशाओं का पालन करते हैं, तो वो अपनी उपलब्धि के लिए खुद को जिम्मेदार बनाता है। वो हमारे ईमानदार प्रयासों की सफलता के रूप में हमें अनुमान नहीं लगाएगा। एक बार भी हमें असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो असफलता को जानता है।
हमें अपनी कमजोरी और अक्षमता की बात नहीं करनी चाहिए। ये परमेश्वर का प्रकट अविश्वास है, जो उसके वचन का खंडन है। जब हम अपने बोझ के कारण बड़बड़ाते हैं या उन जिम्मेदारियों से इनकार करते हैं जिन्हें वो सहन करने के लिए कहता है, तो हम वास्तव में कह रहे हैं कि वो कठोर गुरु है। उसे वो करने की आवश्यकता है जो उसने हमें करने की शक्ति दी है। दास सेवक की भावना हम अक्सर विनम्रता करते हैं, लेकिन सभी विनम्रता से कहते हैं, जो कि व्यापक रूप से अलग है। विनम्रता के साथ कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धि में बौने हैं, आकांक्षा में कमी है और अपने जीवन में कायरतापूर्ण तेजस्वी बोझ की तरह हम उन्हें सफलतापूर्वक ताकत के आधार पर पूरा करते हैं।
परमेश्वर जिसके द्वारा काम करेगा, वो कभी कभी सबसे बड़ा काम करने के लिए नम्र साधन का चयन करता है, क्योंकि उसकी शक्ति पुरुषों की कमजोरी के माध्यम से प्रकट होती है। हमारे पास मानक है और इसके द्वारा हम एक बात को महान और दूसरे को छोटा बताते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे नियम के अनुसार अनुमान नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं मान सकते हैं कि जो हमारे लिए महान है वो ईश्वर के लिए महान होना चाहिए, या जो हमारे छोटा है वो उससे छोटा होना चाहिए। ये हमारी प्रतिभाओं पर निर्णय पारित करने या अपना काम चुनने के लिए हमारे साथ आराम नहीं करता है। हम उन बोझों को उठाने के लिए हैं जिन्हें परमेश्वर नियुक्त करता है। हमारा कार्य परमेश्वर को पूरे मनोभाव हसमुख सेवा द्वारा सम्मानित किया जाता है। वो प्रसन्न होता है जब हम कृतज्ञता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, ये मानते हुए कि हम उसके साथ सहश्रमिक होने के योग्य हैं।
प्रतिभा हटाई। सुयोग्य सेवक के रूप में वाक्य। इसलिए उससे प्रतिभा ले लो और उसे दे दे जो उस प्रतिभा यहां के रूप में वफादार के इनाम में न केवल अंतिम निर्णय पर इनाम का संकेत दिया जाता है, बल्कि क्रमिक इस जीवन में प्रतिशोध की प्रक्रिया।
जैसा कि आध्यात्मिक दुनिया में स्वाभाविक है, अप्रयुक्त हर शक्ति क्षीण और क्षय होगी। गतिविधि जीवन का नियम है, आलस्य मृत्यु है। आत्मा की अभिव्यक्ति हर आदमी को लाभ कमाने के लिए दी जाती है। पहला कुरंथियों 12:7। दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए नियुक्त उसके उपहार बढ़ जाते हैं और अंत में वापस ले लिए जाते हैं। वो जो उसे प्राप्त करने से इनकार करता है, जो उसे प्राप्त होता है, वो अंत में पता चलता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसी प्रक्रिया के लिए सहमति दे रहा है जो निश्चित रूप से बौना है और अंत में आत्मा के संकायों को नष्ट कर देता है। किसी को ये न माने कि वे स्वार्थ का जीवन जी सकते हैं और फिर अपने अंतर पर सेवा करते हुए प्रभु के आनंद में प्रवेश कर निस्वार्थ प्रेम की खुशी में वे भाग नहीं ले सकते थे। उन्हें स्वर्गीय अदालतों के लिए फिट नहीं किया जाएगा। वे प्रेम के शुद्ध वातावरण को सराहना नहीं कर सकते जो स्वर्ग में व्याप्त हों। स्वर्गदत्तों की आवाज और उनके वीणा के संगीत उन्हें संतुष्ट नहीं करते। उनके दिमाग में स्वर्ग का विज्ञान एक रहस्य के रूप में होगा। महान फैसले के दिन जो लोग साथ चले गए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं खुद के बारे में सोचकर। खुद को प्रसन्न करते हुए उन सभी पश्चवी को न्यायाधीशों के साथ रखा जाएगा जिन्होंने बुराई की। उन्हें वही निंदा मिलती है।
कई जो मसीही होने का दावा करते हैं
वे ईश्वर के दावों की उपेक्षा करते हैं और फिर भी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत है। वे जानते हैं कि निंदा करने वाला, हत्या करने वाला, व्यभिचारी दंड का हकदार है, लेकिन वे सुसमाचार का प्रचार सुनना पसंद करते हैं और इसलिए वे खुद को मसीही मानते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने जीवन को स्वयं के लिए खर्च करने में व्यतीत किया है, लेकिन वे उतना ही आश्चर्यचकित होंगे इस वाक्य को सुनने को जितना कि विश्वासघात सुनने के लिए था। उससे प्रतिभा ले ले यहूदियों की तरह वे उनके द्वारा किए जाने उपयोग के लिए उनके आशीर्वाद का आनंद लेने की गलती कर रहे हैं। कई जो मसीही प्रयास से खुद बहाना करते हैं, वे काम करने के अपनी अक्षमता का अनुरोध करते हैं, लेकिन क्या ईश्वर ने उन्हें इतना असमर्थ बना दिया? नहीं, कभी नहीं। यह अक्षमता है, उनकी निष्क्रियता से उत्पन्न हुई है और उनकी जानबूझकर पंसद वे बनी हुई है। पहले से ही अपने स्वयं के चरित्र में वे वाक्य के परिणाम का एहसास कर रहे हैं, उससे प्रतिभा ले लो। उनकी प्रतिभा का लगातार दुरुपयोग उन्हें पवित्र आत्मा के लिए प्रभावशाली रूप से बुझा देगा, जो एकमात्र प्रकाश है। वाक्य तुम्हें अप्राकृतिक सेवक को बाहरी अंधकार में डाल देता है। स्वर्ग की मुहर उस पसंद पर निर्भर करता है जो उन्होंने स्वयं अनंत काल के लिए बनाई थी।